हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी को उल्टी जैसा फील हुआ और वो दौड़कर बाहर गई। आंशी की हालत देखकर हरलीन हैरानी से वहां खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है, आंशी तो सिंगल है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। विधिक उस वक्त लंच के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आया था। वो डाइनिंग एरिया की तरफ गया तो उसने देखा आंशी वॉमिटिंग करने के बाद वहां बैठी थी। वो काफी रेस्टलेस लग रही थी। विधिक उसके पास गया। विधिक आंशी को कुछ पूछता उससे पहले हरलीन ने वहां जाकर उसे बताते हुए कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वॉमिटिंग हो रही है। विधिक ने आंशी की तरफ देखा और फिर उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बटरफ्लाई, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाया करो। बुआ, आप यकीन नहीं करेंगी, पूरे रूम में स्नैक्स के पैकेट बिखरे हुए रहते हैं। मैं क्या करूं, मुझे क्रेविंग होती है तो मैं खा लेती हूं। अब बार बार हेल्दी फूड लेने के लिए तो आ नहीं सकती ना, ऊपर से आजकल मुझे भूख भी बहुत लगती है, आंशी ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। अब से तुम्हारी एक नहीं चलने वाली, तुम्हारा डाइट चार्ट डाइटिशियन डिसाइड करेगा। वन मोर थिंग, अब तुम अब कमरे में आराम करने के लिए जा रही हो, वहीं तुम्हारे लिए खाना पहुंच जाएगा। अगर तुम ठीक नहीं हुई तो सोच लो, यहीं पर शादी करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारी फैमिली को यहां बुलाना होगा, विधिक ने आंशी को डांटते हुए कहा। आंशी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं ऐसा मत करो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी विधिक, दैट्स लाइक माई बटरफ्लाई, चलो अब जाओ अपने रूम में, विधिक बोला। आंशी उसकी बात मानते हुए तुरंत कमरे में चली गई। हरलीन आंशी को देख रही थी। फिर वो उसके जाने के बाद विधिक से बोली, आज का काम तुम देख लेना, मैं आंशी के पास रुकती हूँ, उसे थोड़ी खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है तो हम बाहर के एरिया में हैं। बुआ, बाहर बहुत ठंड है, क्या जरूरत है उसे बाहर लेकर जाने की, विधिक ने पूछा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी बटरफ्लाई को लेकर उड़ नहीं रही हूँ, उसे सच में खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, तुम जाकर काम करो, मैं देख लूंगी, हरलीन ने सख्ती से जवाब दिया और फिर ऊपर आंशी के पास जाने लगी। पीछे से विधिक ने तेज में आवाज में कहा, ठीक है लेकिन सिर्फ आधे घंटे, उसे ज्यादा एक मिनट के लिए भी आप दोनों बाहर नहीं रुकेंगी। ओके बॉस, हरलीन ने बिना मुड़े तेज आवाज में कहा। हरलीन अच्छे से जानती थी पूरे घर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, अगर कहीं पर कम कैमरा है तो वो विला के बाहर वॉकिंग एरिया में था, वॉक करने के बहाने आंशी को बाहर लेकर गई। हालांकि बाहर काफी सर्दी थी लेकिन उस एरिया में आने के बाद आंशी को अच्छा लग रहा था। वो हरलीन की तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू सो मच बुआ, मुझे इसकी जरूरत थी और मुझे भी तुमसे बात करनी थी, क्योंकि अपने कमरे के अंदर तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी जिससे विधिक को तुम पर जरा सा भी डाउट हो, हरलीन ने आंशी की तरफ देखते हुए सख्त अंदाज में कहा। उनकी बात सुनकर आंशी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। आंशी की नजरों को समझते हुए हरलीन ने आंशी से पूछा, इस तरह मुझे मत देखो आंशी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और अब चुपचाप जल्दी से मुझे बताओ कि पेरिस में उसे विला से निकलने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे बस इतना पता है मालिक ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और उसके बाद तुम विधिक को नहीं मिली थी। मुझे सच जानना है आंशी, और तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, क्योंकि इतनी ठंड में उससे ज्यादा विधिक हमें बाहर नहीं रहने देगा। आंशी ने हरलीन की बात पर हामी भरी और उसे सब बताते हुए कहा, मालिक ने मुझे किडनैप कर लिया था, वहां से मुझे एक सीक्रेट एजेंट ने बचाया था, उसने कुछ दिन मुझे अपने साथ रखा था और फिर बाद में लंदन भेज दिया। लंदन में विधिक ने मुझे ढूंढ लिया था, वहां उसने मुझे अपनी बात मानने के लिए टॉर्चर किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने उसे हाँ कह दी थी ताकि वहां से भाग जाऊं। शादी के लिए हम चर्च गए थे जहां मौका देखकर मैं निकल गई थी, उसके बाद मैं इंडिया अपने घर चली गई, वहां विधिक ने मुझे फिर ढूंढ लिया और यहाँ ले आया। आंशी के साथ जो भी हुआ था उसने शॉर्ट में हरलीन को बता दिया था। मुझे ये सब नहीं जानना है और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट है, मुझे ये जानना है कि विधिक के अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा लड़का आया था या नहीं, तुम्हारे मुंह से किसी अमन का जिक्र हुआ था, मुझे उसके बारे में जानना है आंशी, हरलीन ने सीधे सीधे कहा। उसे डाउट हो गया था आंशी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो आंशी से ये सब पूछ रही थी। आंशी जानती थी कि अमन का नाम लेना उसके लिए मुसीबत बन सकता था, उसने हरलीन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, प्लीज बुआ उसका नाम मत लीजिए, गलती से भी विधिक ने सुन लिया तो वो मेरी जान ले लेगा। यकीन मानो आंशी, जान पर तो वैसे भी तुम्हारे आने वाली है, बस यूं समझ लो तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। अब मुझे बताओ अमन कौन है और विधिक उससे इतनी नफरत क्यों करता है, हरलीन ने एक बार फिर पूछा। आंशी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर धीरे से कहा, मेरी और अमन की शादी हुई थी, वो एक एजेंट है जो विधिक के पीछे था। आंशी की बात सुनते ही हरलीन को जैसे झटका सा लगा हो, वो कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोली, फिर उसने आंशी की आंखों में देखते हुए पूछा, विधिक उस लड़के के बारे में जानता है, इसका मतलब शादी के बारे में भी जानता होगा। क्या उसे पता है कि तुम उस लड़के के इतना क्लोज गई हो कि तुम प्रेग्नेंट भी हो सकती हो? हरलीन का सवाल सुनकर आंशी की नजरें झुक गईं। उसने ना में सिर हिलाया। आंशी बिल्कुल चुप थी, जबकि उसका जवाब सुनकर हरलीन ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसने आंशी को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, ये तुमने क्या कर दिया आंशी? उसके क्लोज जाने के बाद विधिक से सब कुछ छुपाकर तुम उसके साथ अकेले यहाँ तक आ गई। डू यू हैव एनी आइडिया? यू आर प्रेग्नेंट, और विधिक के सामने ये सच आ गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। वो तुम्हें किसी और का छूना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यहाँ तुम इतनी आगे बढ़ गई, हरलीन ने अभी अभी कहा था। उससे आंशी को एक बड़ा झटका लगा। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, और उसे तो पता तक नहीं था हरलीन जो कह रही थी वो सच भी था। उसने खुद अपनी आंखों के सामने देखा था जब यहाँ आने से पहले विधिक ने माइकल और जैक को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने आंशी को टच किया था। आंशी ने धीरे से कहा, आपको कोई गलत फहमी हो गई है बुआ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हम दोनों क्लोज तो आए थे, लेकिन उस टाइम में जब विधिक ने मुझे अपने पास आने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया था, उस एक हफ्ते में ही हम दो से तीन बार ही इंटीमेट हुए थे। इतने कम टाइम में मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? बच्चे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? विधिक बिल्कुल ठीक कहता है कि तुम अभी भी ठीक से मैच्योर नहीं हुई हो। अंदर चलो, हम टेस्ट करने के बाद ही कन्फर्म करेंगे, हरलीन ने कहा, और फिर आंशी को पकड़कर अंदर ले जाने लगी। वो दोनों अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सामने विधिक खड़ा था। हरलीन और आंशी नहीं जानती थीं कि विधिक ने उनकी बातें सुनी है या नहीं, क्योंकि इस वक्त विधिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था।